नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित।
जी,
हम बात करेंगे युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग दो की। ये 1988 से 90 के दौरान जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला आई थी उसी का एक हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल, और ये साहित्य जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा था, उनका ज्ञान शरीर है।
सही कहा। वसंत पंचमी 1990 को उन्होंने वंदनिया माताजी से कहा भी था कि मेरा ये ज्ञान शरीर, ये क्रांतिधर्मी साहित्य जन जन तक पहुंचना चाहिए।
जी,
तो आज हमारी कोशिश यही है कि इसी ज्ञान शरीर के एक खास पहलू को समझे, प्रतिभा परिष्कार। आखिर क्यों और कैसे? हमारे श्रोता प्रबुद्ध हैं तो हम सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव का तर्क बहुत सीधा और स्पष्ट है। जैसे बड़े काम के लिए बड़ी शक्ति चाहिए ना?
हाँ,
इसी समाज की जो बड़ी गहरी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए साधारण प्रतिभा से काम नहीं चलेगा। उसके लिए परिष्कृत मतलब निखरी हुई, जागी हुई प्रतिभा चाहिए।
अच्छा,
और ये पुस्तक सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं बताती, बल्कि प्रतिभा को निखारने का, उसे जगाने का एक पूरा विज्ञान, एक प्रैक्टिकल तरीका सामने रखती है।
तो चलिए इसी विज्ञान की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, जीवनी शक्ति। गुरुदेव इसकी तुलना गाड़ी की बैटरी या पेट्रोल से करते हैं।
हाँ, यूं समझिए कि शरीर एक मशीन है और जीवनी शक्ति उसका ईंधन। इसके बिना यह ढांचा बिल्कुल निर्जीव है।
और आजकल हम जो देख रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रोग इतने बढ़ रहे हैं, क्या इसका संबंध इसी जीवनी शक्ति के कम होने से है?
निश्चित रूप से, पूज्य गुरुदेव इसी तरफ इशारा करते हैं। ज्यादातर चिकित्सा पद्धतियां आप देखें तो वो लक्षणों का इलाज करती हैं।
हाँ, ऊपरी तौर पर
जी, लेकिन जो मूल कारण है जीवनी शक्ति का कम होना, वो अक्सर अनदेखा रह जाता है। गुरुदेव इसी शक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, पुरुषार्थ मतलब मेहनत करने की क्षमता और हर तरह की प्रगति का आधार मानते हैं। और ये शक्ति अलग अलग स्तर पर प्रकट होती है। शरीर में ओजस के रूप में दिखती है, मतलब शारीरिक बल, चेहरे पे चमक।
अच्छा, ओजस।
मन में तेजस के रूप में, यानी मानसिक स्पष्टता, सोचने समझने की ताकत, निर्णय लेने की क्षमता,
तेजस।
और अंतःकरण यानी भीतर, आत्मा के स्तर पर वर्चस के रूप में, मतलब एक तरह का आत्मिक प्रभाव, एक आभा। ये तीनों जुड़े हुए हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प विभाजन है, ओजस, तेजस, वर्चस। तो जीवनी शक्ति हुई ऊर्जा, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा और बल कैसे मिले? शायद यहीं पर मनोबल की भूमिका आती है।
बिल्कुल,
इंग्लैंड की पैट्रिक मरी का उदाहरण है ना, कितना पावरफुल है। कैंसर के आखिरी स्टेज में थी वो।
जी हाँ,
और जब उन्होंने अपना पूरा ध्यान, पूरी इच्छा शक्ति दूसरों की भलाई में लगा दी, एक नई स्कैनिंग मशीन जुटाने में, तो कहते हैं उनकी अपनी बीमारी ठीक हो गई। ये अविश्वसनीय सा लगता है।
हाँ, ये मनोबल की, विल पावर की जबरदस्त शक्ति दिखाता है। अगर जीवनी शक्ति ईंधन है तो मनोबल समझिए वो इंजन है जो उसे एक दिशा में लगाकर आगे धकेलता है। अपने पुराणों में भी देखें, हनुमान जी में अपार शक्ति थी पर वो भूल गए थे।
हाँ, जामवंत ने याद दिलाया था।
बिल्कुल, जामवंत ने जब उनका मनोबल जगाया, उन्हें उनकी क्षमता का एहसास कराया, तभी तो वो समुद्र लांग पाए। इतिहास में चाणक्य को देखिए।
हाँ, एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया।
वही, ये सब दृढ़ इच्छा शक्ति मनोबल के ही तो उदाहरण है।
तो मनोबल हुआ संकल्प की शक्ति, लेकिन आचार्य जी आत्मबल को इससे भी ऊंचा, ज्यादा स्थायी मानते हैं, सही है ना?
बिल्कुल सही, आत्मबल मनोबल से भी ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। ये अंतर का विश्वास है, नैतिक बल है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ है।
और इसे पाने के, साधने के तरीके?
दो मुख्य तरीके बताए हैं, तप और योग। अब यहाँ तप का मतलब सिर्फ भूखे रहना या कठिन आसन करना नहीं है।
अच्छा, क्या मतलब है फिर?
तप का असली मतलब है कठिनाइयों का हिम्मत से सामना करना, अनुशासन में रहना, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना, एक तरह की साहसिकता।
साहसिकता। और योग?
और योग का अर्थ है जीवन में जो बिखराव है, जो फालतू की चीजें हैं, उनसे मन को हटाकर एक सुव्यवस्था लाना, मानसिक स्पष्टता, ताकि ऊर्जा सही जगह लगे, मतलब अपने आप को फैलाना, आत्मविस्तार।
तो तप हुआ साहस और अनुशासन, और योग हुआ सुव्यवस्था और आत्मविस्तार।
जी हाँ, तप यानी साहसिकता और योग यानी सुव्यवस्था, ये दो आधार हैं प्रतिभा संवर्धन के।
गांधी जी का उदाहरण कितना फिट बैठता है यहाँ।
देखने में साधारण थे।
बिल्कुल,
पर आत्मबल और तेजस्विता देखिए जरा, इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया उनके सामने।
लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर हर इंसान में इतनी क्षमता है तो वो दिखती क्यों नहीं? हम सब क्यों नहीं बन जाते हनुमान या गांधी?
बहुत अच्छा सवाल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इंसान अपनी असलियत, अपनी अपार क्षमता को भूला हुआ है। वो खुद को छोटा, कमजोर, दीनहीन मान बैठा है। इसी को वो आत्मविस्मृति कहते हैं।
आत्मविस्मृति, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस।
हाँ, प्रतिभा कोई बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर ही सोई पड़ी है, बस उसे जगाना है।
जब आचार्य जी ये कहते हैं कि हम अपनी क्षमता का बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो सोचना पड़ता है कि बाकी क्षमता कहाँ है, कौन सी रुकावटें हैं, इस आत्मविस्मृति को तोड़ने का तरीका क्या है।
देखिए, इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी होगी। निकृष्ट चिंतन मतलब घटिया सोच और दुष्ट आचरण यानी गलत आदतें, इन्हें छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बाधा है संकीर्ण स्वार्थपरता। सिर्फ मैं, मेरा, मेरे लिए, इस सोच से ऊपर उठना होगा।
सादा जीवन उच्च विचार वाली बात।
बिल्कुल, जब व्यक्ति अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए यानी दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, कुछ करता है, तो उसकी अंदर की शक्तियां अपने आप जागने लगती हैं। परमार्थ से ही प्रतिभा निखरती है, चेहरे पर तेज आता है, वर्चस्व बढ़ता है।
और इसी आत्मस्मृति को तोड़ने, प्रतिभा जगाने के लिए गुरुदेव ने कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी दिए हैं, जैसे स्वसंकेत, ऑटो सजेशन।
हाँ, स्वसंकेत जैसी तकनीकें बहुत कारगर हैं। ये हमें अपनी नकारात्मक सोच से निकालकर पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने में मदद करती हैं।
और प्राणाकर्षण प्राणायाम?
ओह, जीवनी शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। दर्पण साधना है जो आत्मविश्वास जगाती है। ये सब तरीके बताते हैं कि ये केवल बातें नहीं हैं, ये एक पूरा विज्ञान है, एक प्रोसेस है।
तो सार ये निकलता है कि हम सबके अंदर क्षमता का एक अथाह सागर है, जिसे हम जीवनी शक्ति, मनोबल और आत्मबल के रूप में समझ सकते हैं।
एकदम सही। जीवनी शक्ति हमारी मूल ऊर्जा है, मनोबल उसे दिशा देने वाला संकल्प है, और आत्मबल सबसे गहरा आंतरिक विश्वास और नैतिक बल है।
और इन्हें जगाने की चाबियां हैं तप यानी साहस और अनुशासन,
और योग यानी सुव्यवस्था और परमार्थ। जब हम इन साधनों से अपनी आत्मविस्मृति को तोड़ते हैं, तो हमारी छिपी हुई प्रतिभा समाज के काम आने के लिए प्रकट होती है।
पूज्य गुरुदेव का ये क्रांति धर्मी साहित्य वाकई हमें जगाता है, अपनी उस सोई हुई शक्ति को पहचानने और उसे आज की जरूरतों के हिसाब से निखारने की प्रेरणा देता है।
निश्चित रूप से। और अंत में एक विचार छोड़ जाता है हमारे लिए।
क्या?
कि सबको जानने समझने के बाद हम असल में अपनी इस छिपी प्रतिभा को जगाने के लिए, अपनी छोटी सोच से ऊपर उठकर खुद के और समाज के भले के लिए आज अभी पहला कौन सा कदम उठा सकते हैं।